रात के 8 बज रहे थे। रजनी घर आ चुकी थी, परेशान अब तक घर नहीं आया था। सबको खाना परोसते हुए कशिश की नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो कशिश तुरंत सब छोड़कर जाने लगी, पर रजनी ने उसे रोक दिया और खुद चली गई दरवाज़ा खोलने। दरवाज़ा खोला तो सामने थका हारा ईशान खड़ा था। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। रजनी को देखकर ईशान मुस्कुराया और अंदर आते हुए बोला, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ दीदी। रजनी ने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद ईशान कपड़े बदलकर अपने आसन पर बैठ गया। कुछ पल बाद उसके सामने थाली आ गई और साथ ही कशिश की मीठी सी आवाज़ कानों से टकराई, खीर बनाई है, खाओगे? ईशान को लगा था कि रजनी होगी। कशिश की आवाज़ सुनकर उसने चौंकते हुए निगाहें उठाईं और नज़रें सीधा कशिश की निगाहों से टकराईं, जो उसकी तरफ हल्का झुकी हुई थीं। ईशान कशिश की काजल से सनी बड़ी बड़ी काली कजरारी आंखों में खोसा गया था। ईशान को खामोश देखकर कशिश ने असमंजस भरी निगाहों से देखते हुए अपना सवाल दोहराया, मिश्रा जी, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, बताइए ना, खीर लाऊं? दीदी कह रही थी कि आपको खीर पसंद नहीं, मैंने बनाई है, खाओगे? ईशान उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगी। ईशान एक बार फिर इनकार करके उसका दिल नहीं दुखा सका और उसका मन रखने के लिए सहमति में सिर हिला दिया, थोड़ी सी ले आओ। ईशान का जवाब सुनकर कशिश का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झट से सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल के पास चली आई। उसको कटोरी में खीर निकालते देखकर रजनी ने असमंजस भरी निगाहों से उसको देखते हुए सवाल किया, कशिश, खीर किसके लिए निकाल रही हो, सबको तो दे दी? उसका सवाल सुनकर कशिश ने सिर घुमाकर उसे देखा और मोहिनी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, मिश्रा जी के लिए निकाल रही हूँ दीदी। ईशान के लिए? रजनी ने चौंकते हुए हैरानगी से सवाल किया, जिस पर कशिश ने सहमति में सिर हिला दिया। रजनी हैरान परेशान निगाहों से देखते हुए बोली, ईशान के लिए, पर वो तो? अभी रजनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर सकती थी कि कशिश ने उसकी बात काटते हुए मुस्कुराकर कहा, उनसे पूछकर ही लेकर जा रही हूँ दीदी, मुझे याद है आपने कहा था कि वो खीर नहीं खाते, इसीलिए मैंने पहले उनसे पूछ लिया और उन्होंने खुद कहा मुझे खीर लाने के लिए, तभी तो लेकर जा रही हूँ। अच्छा, आप यहाँ देख लीजिए, मैं उन्हें खीर देकर आती हूँ। कशिश ने अपनी बात कही और खीर की कटोरी चम्मच लेकर वहाँ से ईशान के पास चली आई। उसकी बात सुनकर सिर्फ रजनी ही नहीं, बाकी सभी अचंभित से बस उसे देखते ही रह गए थे, जैसे कशिश कुछ असंभव बात कह रहे हो जिसका होना मुमकिन ना हो। रजनी के साथ साथ बाकी सभी सिर घुमाकर ईशान को देखने लगे, जो कशिश की लाई खीर खाते हुए कशिश को देख रहा था, जो कुछ कह रही थी शायद। उसके गुलाबी रंग में रंगे मुस्कुराते लब हल्के हिल रहे थे, पर दूरी होने की वजह से वो क्या कह रही थी ये कोई सुन नहीं पा रहा था। ईशान को खीर खाते देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रजनी की आंखों की पुतलियां भी आश्चर्य से फैल गईं, मानो दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया उसने। कशिश की किसी बात पर ईशान के लब हल्के से मुस्कुरा दिए और उसे मुस्कुराते देखकर रजनी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। दोनों को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, आज सालों बाद ईशान ने खीर चखी है, माँ के जाने के बाद से उसने कभी खीर की तरफ देखा तक नहीं, खाना तो दूर की बात थी। उस दिन के बाद ईशान एकदम से बड़ा हो गया था, बहुत बदल लिया था उसने खुद को, और वो हर चीज़ जिससे कभी बहुत प्यार हुआ करता वो सब त्याग दिया था उसने। एक वक्त था जब खीर उसे इतनी पसंद हुआ करती थी कि माँ से जिद करके बनवाता था और मेरे हिस्से की भी खुद खा जाता था, पर माँ के जाने के बाद उसने दोबारा कभी खीर का नाम तक नहीं लिया अपनी जुबान से, जब बनता था तब भी कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। माँ ने जो किया उसने खीर पर से उसका मन उठा दिया था और उस मिठास को कड़वी याद से भर दिया था। आज सालों बाद उसने खीर खाई, वो भी तुम्हारी वजह से। शायद तुम ही हो जो मेरे छोटे को वापस पहले जैसा बना सकती हो, उसे फिर से जीना सिखा सकती हो। शायद तुम ही हो जो उसकी ज़िंदगी में खुशियां लौटा सकती हो। शायद इसीलिए महादेव ने तुम्हें ईशान और हमारी ज़िंदगी में भेजा है, ताकि तुम ईशो को अतीत की उन कड़वी यादों से बाहर निकाल सको और वो फिर से ज़िंदगी की मिठास को चख सके, फिर से हंसने मुस्कुराने और बोलने लगे, ताकि एक बार फिर उसके ठहाकों की आवाज़ इस आंगन में गूंज सके और हमें हमारा खोया ईशान वापस मिल जाए। रजनी ने मन ही मन महादेव को धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए, पर क्या अतीत की बुरी यादों को भूलकर आगे बढ़ना ईशान के लिए इतना आसान होगा? क्या कशिश रजनी की उम्मीद पर खड़ी उतर सकेगी? रात के 9 बज रहे थे। ईशान खाना खाने के बाद रूम में चला आया था और इस वक्त बालकनी में खड़ा था, जहां से घाट का मनमोहक दृश्य दिखता था, जहां गंगा के घाट पर सुबह शाम लोगों का हुजूम उमड़ता था उसकी निराली छटा और भव्य आरती देखने के लिए। वहीं रात के इस पहर में घाट एकदम वीरान उदासीन लग रहा था। आकाश में काली घटा छाई हुई थी और गंगा की निर्मल धाराएं भी स्याह रंग में डूब सी गई थीं। कुछ इस प्रकार से वो चंचल धाराएं खुद में शांति धारण किए हुए थे, जैसे उनका मन उचट हो गया हो, जैसे दुनिया की भीड़ से उनका मोह भंग हो गया हो और वो तन्हाई में शांति से कुछ पल खुद के साथ बिताने को आतुर हों। कुछ गंगा की इन लहरों जैसी ही जिंदगी थी ईशान की। दिन भर अलग अलग लोगों से मिलना जुलना, हंसी मजाक, बातें होती रहती थी। अपने काम में पूरी तरह से डूबा रहता था, जिंदगी के लिए जिंदगी से संघर्ष करता और रात को जब थका हारा लौटता तो बस खामोशी से कुछ पल खुद की इस तन्हाई के साथ बिताता था, आत्ममंथन करता। घाट और गंगा मैया को घंटों खामोशी से निहारता था, जैसे मूक भाषा में घाट गंगा मैया से अनगिनत बातें कर रहा हो, अपना सुख दुख उनसे साझा कर रहा हो, जो कभी किसी से नहीं कहता वो उन्हें बता रहा हो। कशिश सबके खाने के बाद रजनी के साथ मिलकर किचन का काम करने लगी।
कुछ देर बाद जब वो सब काम खत्म करके कमरे में आई तो कमरे को खाली देखकर थोड़ा चौंक सी गई। उसने पूरे कमरे में बाथरूम में देखा, परेशान कहीं नजर नहीं आया। आखिर में उसने बालकनी की तरफ कदम बढ़ाई। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सीधे सामने रेलिंग के पास खड़े ईशान पर चली गई। इसके साथ ही उसके लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुराकर ईशान की तरफ कदम बढ़ा दिए। ईशान उसकी उपस्थिति से पूरी तरह से अनजान नहीं था। कशिश के आगे बढ़ते कदमों के साथ उसके पैरों में मौजूद पायलों की छमछम की आवाज उसके आने की चुगली कर रही थी, पर ईशान तब भी यूं ही खड़ा रहा। कशिश उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, मिश्रा जी, इस वक्त यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ईशान खामोश ही रहा। उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। कशिश ने सिर घुमाकर उसे देखा और नाराजगी से गाल फुला लिए। मिश्रा जी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमको जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, तो तुम भी बोलना बंद करो और जाकर सो जाओ। अब की बार ईशान ने एकटक घाट को देखते हुए ही बिना किसी भाव के जवाब दिया, पर उसका जवाब सुनकर कशिश का मुंह बन गया और वो खींचते हुए बोल पड़ी, कैसे जाकर सो जाऊं जब मुझे नींद नहीं आ रही? तो और क्यों चुप रहूं है? तुम्हारा ना सही, पर मेरा तो मन है बोलने का, तो मैं तो बोलूंगी। पता है सुबह से मैंने किसी से बात नहीं की है, कितना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, तुम्हारे अलावा किसे मैं अपनी बातें सुनाऊं? क्या कमरे की दीवारों से जाकर बात करूं? ईशान ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस छोड़ी, फिर उसकी तरफ पलटते हुए बोला, काशी, क्या तुम थोड़ी देर भी शांत नहीं रह सकती? ईशान का सवाल सुनकर कशिश ने गुब्बारे जैसा मुंह फुला लिया और मासूम सी शक्ल बनाकर मायूसी से बोली,
तुम नहीं थे, दीदी भी नहीं थी, तुम्हारी चाची और बड़ी मम्मी से ज्यादा बोलने से डर लगता है मुझे, और शुभ्रा शुभिका दोनों पढ़ाई कर रही थी, तो बताओ मैं किससे बात करती? अब तुम भी मुझे बोलने नहीं दे रहे, कोई भी मेरी बात नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे मेरा डोडो ला दो, वो मेरी सारी बात सुनता है, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कशिश का मायूस उतरा हुआ उदास चेहरा देखकर ईशान के चेहरे के भाव कुछ कोमल हो गए, पर जब उसने उसकी आखिरी की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर सवालिया भाव वो भराए। उसने कशिश के चुप होते ही कन्फ्यूजन भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, डोडो?
हाँ डोडो, मेरा दोस्त, वो बड़ा वाला टेडी, वो तुम सब इंसानों से अच्छा है, वो कभी मुझे बोलने से नहीं रोकता, मुझ पर गुस्सा भी नहीं करता, चिल्लाता भी नहीं है और मेरी सारी बातें भी सुनता है।
कशिश ने तुनकते हुए जवाब दिया और गालों को गुब्बारे जैसा फुलाए नाराजगी से उसे देखने लगी। कशिश का जवाब सुनकर ईशान का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका सिर घूमने लगा। ईशान को ऐसे जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। ईशान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पहले तो वो आंखें फाड़े हैरान परेशान सा उसको देखता रहा, फिर बेबसी से सिर हिलाते हुए मन ही मन बोला, वो तो सुनेगा ही, उसे कौन सा कुछ सुनाई देता है जो उसे फर्क पड़े, और अगर ना भी सुनना चाहे तो कौन सा बेचारा बोलकर तुम्हें रोक सकता है? शुक्र मनाओ कि बेचारा बेजान है, वरना तुम्हारी 24 घंटे लगातार बकबक सुनकर या तो बेचारा अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठता या फिर बहरा हो जाता तुम्हारी बकवास बातें सुन सुनकर। ईशान खींचा हुआ सा खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था जब अचानक उसके दिमाग में कुछ हुआ और उसने खुद को फटकारते हुए कहा, ये क्या कर रहा है तू? क्या बेकार की बातें सोच रहा है? लगता है इस पागल लड़की की संगति का असर होने लगा है तुझ पर। दूर रह इससे, वरना खुद तो मेंटल केस है, तुझे भी पूरी तरह पागल कर देगी। ईशान ने खुद को समझाते हुए गहरी सांस छोड़ी और वापस सामने की तरफ मुड़कर घाट को देखने लगा। कशिश कुछ पल मुंह फुलाए उसे घूरती रही, फिर उसके पायलों की धीरे धीरे धीमी पड़ती छमछम की आवाज से ईशान को उसके जाने का आभास हो गया। कुछ देर वो यूं ही खड़ा खामोशी से घाट को निहारता रहा, फिर कमरे में चला आया। रूम में कदम रखा और नजर सीधे सामने गई। अगले ही पल वो बुरी तरह चौंक गया और आंखों की पुतलियां फैलाए सामने देखने लगा। आगे बढ़ते कदम भी ठिठक गए। कमिंग सून, ऐसा क्या देख लिया ईशान ने? जानने के लिए बढ़ते रहिए मेरे साथ इश्क मुबारक।